سنت کا اور بدعات کا فرق فرمایا کہ تو ایک ہے محبوب کو اپنے طریقے سے خوش کرنا. اب محبوب کہہ رہا ہے مجھے یہ پسند ہے, عاشق کہہ رہا ہے نہیں مجھے یہ پسند ہے, یہ عاشق ہے. لہذا محبوب کو محبوب کے طریقے سے خوش کرنا, یہ محبوب کو اپنے طریقے سے خوش کرنا, اسی کا نام ہے بدعات. یہ حضرت نے کیا عجیب تعریف دیکھی, کیونکہ اپنی من پسند ہی تو چلاتا ہے نا انسان. اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو چھوڑ کے جب اپنی پسند پر آتا ہے تو یہی تو سنت سے ہٹ کر راستہ ہے نا. لہٰذا محبوب کو خوش کرنا, ایک تو محبوب کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں تو وہ کہہ نہیں, اس سے پوچھا جا کہ اے محبوب آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کی کیا رضا ہے, آپ کی کیا خوشی ہے. تو محبوب کو اپنے طریقے سے خوش کرنا یہ بدعت ہے, اور محبوب کو محبوب کے طریقے سے خوش کرنا اس کا نام ہے سنت. یہ فرق میرے مرشد نے فرمایا. بدعت کتنی آسان تعریف اور عاشقانہ تعریف میں نے زندگی میں نہیں سنی تھی, کہ محبوب کو اپنے طریقے سے خوش کرنا اس کا نام بدعت ہے, اور محبوب کو محبوب کے طریقے سے خوش کرنا اس کا نام ہے سنت. جیسے کھانا ہے, کھانے کے لیے دسترخوان بچھائے اس کا اہتمام کریں, لیکن دسترخوان کی جگہ اخبار نہ بچھائے. اخبار کو بچھانا یہ اس کی علم کی توہین ہے, کیونکہ اس میں کاغذ اور سیاہی یہ دو علمی چیزیں ہیں. دسترخوان اخبار کو نہ دسترخوان کے طور پر بچھانا چاہیے اور نہ ہاتھ دھونے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے. ہاتھ دھونے کے بعد پوچھتے ہیں نا اس سے, یا شیشے صاف کرتے ہیں, یہ بھی ادب کے خلاف ہے. ہاتھ بچھائے. اور دسترخوان کی علت اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایسی کوئی کھانے کی چیز جو دسترخوان پر گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لے, اس لیے صاف ستھرا دسترخوان ہو, اور اس کا مقصد یہ ہے. اور یہ بھی سنت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایران تشریف لے گئے, جب ایران فتح ہوا تو حضرت وہاں پہ بڑے بڑے ایران کے سردار بیٹھے رہے تھے, نوالا گر گیا تو آپ اٹھا کر کھانے لگے تو پیچھے غلام تھا, اس نے کہا جناب یہاں یہ کام نہ کرے, یہ اس کو بہت مایوب سمجھتے. اصل کے صحبت یافتہ اور عاشق صحابی کا کیا عالم, کیا فرمایا, اترکو سنت حبیبی لہا اولائی الحمقا, کہ ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں اور سنت کو چھوڑوں. اس کا خان پہ کوئی چیز گر جائے تو اس میں ہماری بے شرمی نہیں. ایک عجیب واقعہ یاد آیا, حکیم محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر فرما رہے تھے, سامنے حضرت کے ایک جینٹل مین بیٹھا. اس زمانے میں کوئی کوٹ پتلون ٹائی وغیرہ یہ پہن کر گھومتا تھا نا, اس کو جینٹل مین بولتے تھے. وہ بیٹھا ہوا تھا, وہ کھانا کھا رہا تھا, تو ایک بوٹی اس سے گری, تو اس نے کیا کیا, وہ بوٹی جو گری اس پر پاؤں رکھ کر اس کو پیچھے دھکیل دیا. بس حکیم امت کی چیخ نکل گئی. یہ منظر دیکھ کر رزق کتنی توہین. خواجہ صاحب تھے ساتھ میں, حضرت نے وہ بوٹی اٹھائی اندر سے اور خواجہ صاحب کو دی اور فرمایا کہ اس کو دھو کر لاؤ میں کھاؤں گا. اب وہ خواجہ صاحب دھو کر لائے تو اس کا کہنا اجازت تو میں کھا لوں, فرمایا اچھا آپ کھا لو. بس اس جینٹل مین کی تو بس شرم سے پانی ہو گیا, اتنی جو ہے وہ رزق کی توہین. نظر دسترخوان پہ گر جائے اس کو اٹھا کے کھا لو, اس میں ہمارے لیے بھی محتاج ہے نا رزق. اگر روٹی بند ہو جائے پھر کہاں سے کھائیں گے, اس لیے محتاج ہے, محتاج بن. اور دسترخوان جہاں بیٹھے دسترخوان بھی وہاں بچھائے, ایسا نہیں کہ خود یا مہمان کو گدے پر بٹھایا اور دسترخوان نیچے, یہ بھی خلاف ادب ہے, بلکہ برابر ہونا چاہیے. اگر مہمان کو گدے پر بٹھانا ہے, جی معزز مہمان ہے, تو پھر دسترخوان بھی گدے پر بچھائے, برابر ہونا چاہیے, یا تھوڑا اوپر ہو دسترخوان, یہ ٹھیک ہے. لیکن مہمان گدے پر اور دسترخوان نیچے, یہ طریقہ خلاف ادب ہے, درست نہیں ہے. بٹھانا ہے پھر دسترخوان بھی گدے پر بچھائے, ٹھیک ہے نا, سمجھ سکتا ہوں. ہاں اگر دسترخوان تھوڑا اوپر ہو جائے کوئی حرج نہیں. اب ایک سنت اور بھی, وہ یہ کہ پلیٹوں کو صاف,
प्लेट को साफ कर ले, यहाँ तक के चाट ले पूरा, छोड़े नहीं कुछ उसमें। इसका इसलिए इसका तरीका ये बताया गया, मेरे मुर्शिद ने सिखाया कि फरमाया कि थोड़ा थोड़ा खाना लेना, थोड़ा ले लिया वो खा लिया और ले लिया, वो खा लिया और ले लिया, 50 दफा ले लिया, कोई मना नहीं। लेकिन एक मरतबा प्लेट में इतना भर लेते, अच्छा उसको देख के तबीयत भी वो होती, फिर नतीजा वो खत्म नहीं होता, अब छोड़ देते। अगर हमारी दावतों में जितनी रिस्क की तौहीन होती है और रिस्क का जितना मजाक होता है कि अल्लाह की पना कि बरकत कैसे आएगी। इसलिए और फिर अजीब बात यह कि तरबियत नहीं है ना कि खाने वाला, अब जिसके हाथ में पहले चमचा आ जाए, जिसके हाथ में डोंगे का चमचा पहले आ गया, बस समझो सारी टांग की बोटियां उसके पास पहुंच गई, सब वो टांग लेता है। यानी इतनी तमीज नहीं कि दूसरे लोग बैठे हैं भाई इंतजार है, नहीं बस सबसे पहले उसने टांग ली है। हाँ भाई चलो एक बोटी ले लो, उसका देखे ना जब इज्तिमाई खाना हो तो उसका तरीका तब यह कि एक बोटी ली, थोड़ा शोरबा ले लिया, अब आगे तुम ले लो, आगे सब लेते जाए, जब सब फारिग हो जाए फिर मिलकर 6 बोटियां डाल ले, कौन मना कर रहा है। लेकिन सलीके से दूसरे भी इंतजार घरात में देख रहा हूँ, चले यार इसको पहले दाव लग गया, इसने मुर्गी की टांग हथिया ली, टांग ली, इसलिए एक बोटी ले और थोड़ा सा शोरबा ले, एक एक चीज, तो उससे क्या होगा, हर आदमी का काम पूरा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा 5 दफा ले ले, 6 दफा ले ले, 7 दफा ले ले, और उससे फिर प्लेट भी साफ होगी। जो एक दफा हम भर लेते ना एक दफा, तो उसका नतीजा क्या होता है कि देखकर तबीयत भी सहर नहीं होती, फिर दूसरी और डिशे नजर आ रही होती। तो इसलिए उसका तरीका क्या, थोड़ा ले उसको खत्म कर ले, फिर और ले ले वो खत्म करे और ले, वो इंसान है भूख लग सकती है। बाज आदमी ये इसकी कोई बुरी बात नहीं, कोई आदमी को अगर 5 रोटी में भूख उसकी खत्म नहीं होती तो कोई बुरी बात नहीं है, ये मसला नहीं है कि ज्यादा ये ज्यादा खाना नहीं कहलाएगा, क्योंकि मजदूर की भूख और है और जो एक आदमी बैठा है उसकी भूख और, जवानी की भूख और है और बुढ़ापे की भूख और, सेहतमंदी की भूख और होती है, बीमारी की भूख और होती है। तो इसमें बुरी नहीं है, ये बुरी चीज नहीं है कि अगर कोई आदमी 5 रोटी खा जाए तो ये कोई वो है। वो मेरे मुर्शिद ने सुनाया ना, एक शेख ने खानका में ऐलान किया अपनी खानका में कि सब लोग खाना एतदाल से खाएंगे, शिकायत आ रही है बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। एक मुरीद की शिकायत गई कि हजरत वो 15 रोटियां खाता है, शेख ने बुला लिया उसको, पर मैं जालिम जब ऐलान किया था खाना एतदाल से खाना है तुम 15 रोटी खाते, तो उसने नाराज किया कि हजरत हर एक का एतदाल अलग होता है। मैं अच्छा वो कैसे, कहा कि हजरत मैं तो अपने घर में 21 रोटियां खाता हूँ, यहाँ तो मैंने कम करके 15 खाई है, और मैं भाई तुम्हारे लिए जा दू, तुम्हारा एतदाल वाकई यही है। तो पता ही चला हर एक का मामला अलग होता है। अब किसी आदमी की भूख जो है वो 1 रोटी से पेट भर जाती है, खुशन बुढ़ापा कितना फर्क पड़ जाता है, सब जवानी की बात और होती है। हमें वो वक्त याद है कि कभी खाना खाया आधे घंटे बाद फिर खिला दो, अब तो एक दफा खाना खा लो तो अब पता चलता है कि भाई दूसरे टाइम पूछना पड़ता है, देखना पड़ता है, भूख नहीं है, फर्क होता है। लेकिन अदब यह है, सलीका ये है, वो अदब और सलीका क्या है कि थोड़ा थोड़ा ले, 10 प्लेट में निकाले। पता ये चले ना कि भाई ट्रेनिंग और तरबियत भी तो कोई चीज है ना, ये छोटी छोटी बातों से पता चलता है। जरा एक दफा एक साहब ने मुझसे कहा, एक मौली साहब मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी वालदा तुम्हारे साथ रहती है, मैंने कहा नहीं मैं उनके साथ रहता हूं। बड़े हैरान हुए इस बात पर, अरे ये तो अजीब बात है। मैंने कहा बाकी बात तो अजीब है ना, मैं मेरे 6 भाई हैं, हम लोग 6 भाई हैं, अगर मेरी वालदा कहते तुम्हारे साथ नहीं रहना मैं वहां जाऊंगी, मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने कहा तो उनका एहसान है ना रखा हुआ। और ये बात कहां से सीखी, मेरे शेख और मुर्शिद हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब दाऊद बरकातहु हज को हाजिरी हुई हजरत, और हजरत ने याद फरमाया कि अपने बुजुर्गों के लिए मत को हज को तशरीफ ले गए। हाँ ये भी मना किया, तशरीफ ले नहीं हाजिरी, क्योंकि वो बड़ी जगह है भाई, शेख से भी बड़ी जगह है, यानी शेख का भी एक मकाम है, उससे जो मकाम है वो उससे भी आला और रफा है। लिहाजा हजरत से एक साहब ने अरज किया कि मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह जिंदा थे, मेरे शेख के मशाइख में से ना जिनका तज़किरा करता हूँ, उस जमाने में हजरत बाहयात थे। तो किसी ने हजरत से पूछा, अच्छा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब भी आपके साथ आए हुए? फरमाया कि नहीं मैं उनके साथ आया। वो उस्ताद शेख है और मुरीद शागिर्द है, हर एक का एक अदब है। तो पता ही चला अदब में सीखने की चीज। लादा खाना क्या करे, थोड़ा थोड़ा ले, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा ले, प्लेट साफ करे। नतीजा ये होगा कि फिर वो प्लेट साफ हो जाएगी। और हदीस शरीफ में आता है कि जब बर्तन को साफ करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन धुआ देता है, आतकल्लाहु मिनन्नार, कि अल्लाह तुझे आग से बचा, मुराद जहन्नम की आग है, कमा आतकनी मिन शैतान, जैसे तूने मुझे शैतान से बचाया। अब ये दुआ देता है बर्तन, अब इस दुआ से हम क्यों महरूम रहे भाई, देखिए ना बर्तन की दुआ मिल रही, तो इस दुआ से हम क्यों महरूम रहे। और वो बर्तन, और फिर एक दफा हमारे किसी के, मेरा किसी के जाना हुआ, तो खाना लाया, तो खाना साफ करके प्लेट भेज दी, तो साहिब मकान वो आए, उन्होंने कहा कि मेरी बीवी तो कह रही है अब इसमें धोने के लिए क्या बचाए, तो बहुत आसान है, जो प्लेट तो पहले ही साफ है, जरा सा मारना काम हो गया। देखिए पता ये चला कि इससे घर वालों को भी सहूलत होती है, सुभान अल्लाह, सुन्नत की बरकत है कि घर वालों को भी सहूलत हो गई। अब वो सालन होता है, अजीब सा लगता है, धोने को दे दे एक दफा, पता चले कितना अजीब लगता है, सुभान अल्लाह, पता चला कि इस सुन्नत की बरकत में घर वालों को भी कैसी राहत है, या जिसके जिम्मे है बर्तन धोना उसको कैसी राहत है, पता चला मुसलमान के इस अमल से भी दूसरे को राहत मिलती। लिहाजा खाने के मुतालिक प्लेट को साफ करना, इसमें हमारी इज्जत है, इसी को सुन्नत का मुजाकरा और ये अदब की चीजें हैं कि इसका एहतमाम करें। बाकी खाने से पहले हाथ धोना, और खाने के बाद हाथ भी धोए, कुल्ली भी करें, हाँ ये भी सुन्नत है। खाने के बाद हाथ धोना भी सुन्नत है और साथ कुल्ली भी करना सुन्नत है, और खाने से पहले सब हाथ धोना सुन्नत है। अच्छा बाद खाना खाना खाए तो ये बुरी बात है कि खाने ऐसी आवाजें ना निकाले, ये भी बुरी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है मुंह में रखा, स्टाइल होता है ना, तो मतलब क्या कि खाने के उसमें आवाजें नहीं आनी चाहिए, ऐसे कि खाते हुए अजीब एक है, तो ये भी बेढंगापन है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही स्टाइल ही बना के, यदि अप्पा ने सलीका सिखाया तो सलीका में वह सलीका क्या है कि पूरी नाजो अदाई दिखा रहे दादे, तो मतलब क्या कि और अगर खाने का हजम करना चाहता है तो खाने को अच्छी तरह चबाए उसका लकमा, अगर हजम करना चाहता है, उससे क्या होता है मेदे पर बोझ नहीं पड़ता। अगर हम इतना ही कर ले अपने खाने को नवाले को अच्छी तरह चबा के फिर मेदे में दाखिल करें, फिर उससे देखे पेट ठीक रहेगा। ये हमारा तो क्या रेस लगी होती ना, खुसूसन गोश्त खाओ तो उस वक्त पता चलता है कि कितने सलीकामंद है हम लोग, तो उस वक्त क्या जल्दी जल्दी बोटी डालो और साली बंदर उतारे जाओ, क्योंकि रेस लगनी है ना ये अजीब मामला है। तो ऐसा नहीं, इससे जो ना पेट खराब होता है, अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे कोई बात नहीं, टाइम ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन सैर को करके उससे क्या होगा मेदे पर बोझ नहीं होगा, क्योंकि सालिम गिजा जब मेदे पर जाती है ना तो उसका नतीजा क्या होता है कि वो मेदे पर बोझ पड़ता है। आखिर वो भी तो कोई काम की थी ना, काम करने की जगह जरा खुली हो तो इंसान सलीके से काम करता है, हिलजुल ना कर सके तो अजीब पेट वो दबा रहता है। तो पता चला ये इकोनॉमिक का एक उसूल है, इकोनॉमिक का एक उसूल है कि जहाँ 20 आदमी काम कर सकते हैं वहां 30 आदमी मत लगाओ, ज्यादा आदमी लगाने से काम ठीक नहीं होता, जितनी जरूरत है उतने आदमी लगाओ। उसी तरह मेदे का भी एक निजाम है, उसके अंदर तेजाबियत होती है जो कि अपना काम करती है जिससे खाना हजम होता है, लिहाजा इसलिए इसको करें। और एक चीज वो याद आई कि टिश्यू पेपर ने दो सुन्नतों को छोड़ दिया, एक तो ये उंगली चाटने की सुन्नत, जैसे टिश्यू पेपर हमारे दस्तरखानों पर आया ना अब उंगली नहीं चाटते, हालांकि उंगली चाटना सुन्नत है, और उसकी तरतीब भी बताई, पहले ये उंगली फिर ये उंगली फिर ये उंगली, आपसे सलम का है कि आप चाटते, खाना तीन उंगली से खाना सुन्नत है, लेकिन चावल तीन उंगली से नहीं खाया जा सकते, इसलिए पांच से खाना बिल्कुल जायज है। दादा आप उंगली चाटे, पहले इसको चाटे बीच वाली, फिर ये शहादत की उंगली कहलाती है इसको चाटे, फिर अंगूठा, और अगर ये दोनों हाथ से उंगली इस्तेमाल की तो फिर इसको इसको इस तरीके से ये 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 तरतीब, इतनी भी तरतीब है बताइए, दीन आप देखिए कितना अजीब कि इतनी तरतीब भी मौजूद है कि कैसे करना है, सलीका देखिए। और दूसरी सुन्नत जो छुट्टी है, एक तो उंगली चाटने की और दूसरी हाथ धोने की सुन्नत, क्योंकि टिश्यू से साफ कर लिया ना, लगे खाने से हाथ पहले हाथ धोने से ये नहीं कहे कि मेरा हाथ साफ है, नहीं इसलिए धोना है कि सुन्नत पर अमल करना, اپنی نظر سنت پر رکھے.
اللہ تعالیٰ ان سنتوں پر مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. تو تھوڑا مذاکرہ سے ذرا تازہ ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا.